તારીખ 19/1/1991 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા હૈદરાબાદમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 35.
કેવડી મોટી બેહદ શક્તિ છે એમ ખ્યાલ આવે છે, અને એની આધાર બુદ્ધિ ઊભી થાય છે. મોટી વાત એ છે કે એનો આધાર આવે છે પોતાને. એટલે જે પ્લેટફોર્મ ઉપર ઊભો તો રાગ અને પરની હતા આધાર બુદ્ધિ, તે તો સાવ પોલું હતું, દુઃખદાયક હતું. એ આખો પ્લેટફોર્મ બદલાઈ જાય છે અને અનંત સુખ, સુખની શરૂઆત થઈને અનંત સુખ ની પ્રતીતિ આવે છે કે અનંત સુખ મને પ્રાપ્ત થશે એમ. સર્વજ્ઞ સ્વભાવ, સુખ સ્વભાવ, પૂર્ણ આત્મા, જેવો છે એવો આત્મા. હા, મળી ગયા. બહુ મોટી વાત છે. શબ્દ ઉપર તો બહુ ખ્યાલ નથી રહેતો, એ તો ભાવમાં તો જે હોય તે હોય, શબ્દ ગમે ત્યારે તો ગમે તે નીકળે. બહુ મોટો ફરક પડે પરિણમનની અંદર, એકદમ રેડિકલ ચેન્જ આવે છે તેને જોઈએ. હમ, નિશ્ચયાભાસી અયથાર્થ પરિણમન છે અને નિશ્ચય સ્વરૂપનું અવલંબન લેવાનું, ભાન થવાનું, જાગૃતિ આવવાનું, એમાં યથાર્થતા છે. યથાર્થતામાં સંતુલન જળવાઈ રહે છે, બેલેન્સ ગુમાવાતું નથી. અને નિશ્ચયાભાસમાં બેલેન્સ, આઉટ ઓફ બેલેન્સ માણસ સંતુલન ગુમાવી દે છે અને એક બાજુ એકાંતમાં આવી જાય છે. એ બહુ મોટો ફરક છે. હા, એને કઈ સ્વરૂપ દેખાતું નથી, ખાલી કલ્પના કરી છે. એટલે કલ્પનાના આધારે વિચાર આવે છે અથવા ભાષા બોલાય છે, એમાં આધાર કલ્પનાનો છે અને અહીંયા આધાર સ્વરૂપનો છે. બહુ મોટો ફરક. વેદનપૂર્વક, વેદનના આધારે, જ્ઞાન ક્રિયાના આધારે જ્ઞાનમાં સુધી પહોંચે છે. હા, પોતાપણે દેખાય છે. થર્ડ પર્સન તરીકે નથી દેખાતું સ્વરૂપ, પોતા સ્વરૂપે દેખાય છે, પોતા રૂપે જણાય છે એમ. ખ ખરેખર તો એમ આશ્ચર્ય થવાના બદલે એમ આશ્ચર્ય થવું જોઈએ કે હું મારા બેભાનપણામાં કેમ ચાલુ છું. આશ્ચર્ય તો એમ થવું જોઈએ કે હું પોતે મારા સ્વરૂપને વિશે બેભાન છું, જે સ્વરૂપમાં અનંત અનંત સુખ ભરેલું છે, અનંત અનંત શાંતિ ભરેલી છે. કે જો જ્ઞાન એ શાંતિને માપવા જાય તો એક વખત એને થંભી જવું પડે સ્વરૂપમાં. એટલી આશ્ચર્યકારી અપરિમિત શાંતિ ભરી છે. એનું મને બેભાન પણ હું નાનો વાત વાતમાં દુઃખી થઈ જાઉં. સહેજ કોઈક પોતાના વિશે ખરાબ બોલે તો માણસને એટલું બધું દુઃખ લાગે અપમાનમાં, આ તો મને મારું મોટું અપમાન કરી નાખ્યું. એને થોડીક પ્રશંસા કરે ત્યાં એને માનની ખુરશી ઉપર બેસી જવાનું મન થાય. ખરેખર તો એને થોડીક પ્રશંસા છે એ જ એનું અપમાન છે. કેમકે પોતે એટલો માન છે સ્વરૂપથી કે એને થોડું માન આપે તો ઓછામાં એને જાજુ દેખાય છે. એની માનતા તો પોતાની ઘણી મોટી છે. તો એવું બેભાનપણું જે વર્તે છે એનું આશ્ચર્ય થવું જોઈએ. તો એ તો એનું જ છે ને. જ્ઞાનમાં જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન જાણવાના ઉદ્દેશથી જો જ્ઞાનને જ્ઞાન જોવે તો જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન જણાય. જેમ કે રસોઈની અંદર મીઠું ઓછું છે કે વધારે છે એ જોવા માટે એવા ઉદ્દેશથી રસોઈ ચાખવી પડે તો તરત જ ખબર પડે. નહીંતર વધારે મીઠું હોય તો ઓછું મીઠું હોય પણ ધ્યાન બીજે હોય તો એમને એમ ખાઈ લઈએ તો કોઈ એમ કે કેમ તમે કાંઈ વાત કરતા નથી, આમાં મીઠાનું પ્રમાણ તો બરાબર નથી. તો તમે એમ કહો ભાઈ મેં તો એમને એમ કાંઈ ધ્યાન દીધા વગર ખાધું છે એટલે ખ્યાલ નથી આવ્યો. પણ જેને ચાખવા આપે તો એ જરા જોઈ તપાસી દો બરાબર બન્યું છે ને, આપણા મહેમાનો આવવાના છે પછી એને ખરાબ નહીં લાગે. તો એક ઉદ્દેશ છે કામ કરના પડે કે હમારે જ્ઞાન મેં માત્ર જ્ઞાન, એકાકાર જ્ઞાન, જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન, સામાન્ય જ્ઞાન, વેદન રૂપ જ્ઞાન ક્યાં ચીજ હૈ. ઇતને પહેલું સમજો દર્શાતે હૈ જ્ઞાન. તો ઉસ ઉદ્દેશ સે હમ અવલોકન કરે તો દૂસરે કે ઘર મેં તો કોઈ ચીજ નહીં દેખની હૈ, હમારે પરિણમન મેં પ્રગટ હૈ ઉસકો દેખની હૈ તો પતા આસાની સે ચલતા હૈ. લેકિન ઉતની દરકાર કભી નહીં કિયા, ઉતના ઉદ્દેશ કભી ધારણ નહીં કિયા. યે બાત હૈ. નાનાકાર જ્ઞાન હા બરાબર દેખ સકેંગે. શરત ઉતની હૈ કે જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન કા આકર્ષણ મોહ વ્યામોહ કલ્પના મહિમા ઓ કમ કર દેની પડે. ક્યા હૈ જો બહિર્જ્ઞાન હૈ ઉસ વિષય મેં હમારી જો મહત્તા આઈ હૈ ઓ હમકો કમ કર દેની પડે. જૈસે કે કિસી કા ક્ષોભસમ બહોત હોતા હૈ તો હમકો મહિમા આ જાતી હૈ. હમારા ભી થોડા ક્ષોભસમ બઢતા હૈ તો પર હમકો ભી થોડી મહિમા આ જાતી હૈ. તો એસા ઓર અનેક જ્ઞેય પદાર્થ હૈ ઉસકી ભી હમે મહિમા આતી હૈ, જો જિસમે જગત કો મહિમા હૈ, જગત કી જગત કો મહત્તા આતી હૈ. એસે પ્રસંગો મેં હમે મહત્તા આયેગી તો જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન कोई पहचान हमें नहीं होगी। उस विषय में बहुत एक अच्छा पत्र है श्रीमद जी का, इनके शब्द में तीन सौ 31 नंबर का एक पोस्ट कार्ड लिखा है सौभाग्य भाई को, वर्ष 25 में। तीन सौ 31 तो क्या बात है इसमें कि जगत में जिस पदार्थ की महत्ता है, जिस अनुकूलताओं की, पैसों की, पंचेंद्रिय के मनोहर विषयों की, तो उसमें कॉमन फैक्टर क्या है कि सुख है वहाँ। सभी बातों का कॉमन फैक्टर कौन सा है कि उसमें सुख लगता है, पर वो सुख लगता है वो भ्रांतिगत रूप से लगता है, इसलिए उन चीजों की महत्ता जगत के लोग जानते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं जगत के साथ। तो एक बहुत अच्छी बात लिखा है इस विषय में कि भ्रांतिगत पणे सुख स्वरूप भाषित होते हैं, ऐसे यह संसारी प्रसंग जो भी उदय हो, प्रसंग हो, और कैसे ना हमारे सुख के दिन आए, ऐसे ऐसे प्रसंग हमारे यहाँ उपस्थित होते हैं, ऐसे संसारी प्रसंग और ऐसे प्रकार, उसमें जब तक जीव को मिठास लगती है, अच्छापन लगता है, खुशी होता है, रस आता है, महत्ता दिखती है, तब तक जीव को अपना सामान्य ज्ञान स्वरूप भाषित होना असंभवित है। क्या कंडीशन रखी? उसमें सुख नहीं है, फिर भी हमको सुख भ्रांतिगत रूप से लगता है, इसका मतलब ये हो गया स्पष्ट तया कहें तो कि हम क्षेत्रा जाते हैं। अगर हम आपके साथ क्षेत्रपिंडी करेंगे तो आपको बहुत दर्द और दुख हो जाएगा कि हमारे साथ से क्षेत्रपिंडी करते हो आप, एक ऐसी बात है। लेकिन पल पल पर क्षेत्रपिंडी हो जाती है, क्षेत्रपिंडी मैंने वंचना ठिकाना ठिक जाते हैं, जैसे कोई अपने को ठगते हैं तो अपने को बहुत दुख होता है कि अपने साथ ठगाई करते हो क्या। लेकिन जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख का अनुभव करते हैं हम, तो एक ठिगाई होती है और वो ठिगाई हम ही अपने साथ कर लेते हैं। तो जहाँ तक ऐसी परिस्थिति चालू है वहाँ तक स्वरूप के जिसमें सच्चा सुख है, निराकुल सुख है, शाश्वत सुख है, वो सुख नजर नहीं आएगा, वो सुख भाषित नहीं होगा, उसकी पहचान नहीं होगी और उसका अनुभव नहीं होगा। ये बात एक पोस्ट कार्ड में लिखी है, इमने तो काठियावाड़ी भाषा में प्रयोग शब्द प्रयोग करो, गुजराती में कोई वे असरकारक शब्द है। भ्रांतिगतपणे सुख स्वरूप भाषे छे एवा आ संसारी प्रसंग ने प्रकारों में ज्यां सुधी जीवने वालप वर्ते छे, शू थाय छे, वालप वर्ते छे,
દીકરો વાલો લાગે અને દીકરાનો દીકરો ડબલ વાલો લાગે. ત્યાં સુધી આત્મામાં સુખ છે એ નજર નહીં આવે. કપના ચલતા પરિણામે એ એક બહોત જબરજસ્ત બાત હૈ જો ઉન્હોને લિખી હૈ. વહાં તક જીવ કો અપના સ્વરૂપ ભાષિત હોના અસંભવિત હૈ, બની નહીં પાયેગા. હમ યે કહેતે ને હમકો નહીં દિખતા હૈ, હમકો કૈસે દિખે, લેકિન કહાં સે દિખેગા? હમારા દૂસરા સાઇડ ક્લિયર નહીં હૈ, એક સાઇડ થોડા ક્લિયર કરના પડતા હૈ. જૈસે અપને પર હમ કિસી સે બેંક સે યા કિસી સે પૈસા લેને કો જાયેંગે તો અપના સાઇડ ઇમેજ પ્રતિષ્ઠા તો ક્લિયર હોની ચાહીએ ને. જ્યાં તક વો સાઇડ ક્લિયર નહીં હૈ વહાં તક અગલે કો વિશ્વાસ નહીં આયેગા, હૈ કે નહીં? એસી બાત હૈ. ઓર સ્વરૂપ કા સુખ યા સ્વભાવ યા શક્તિ તો ભાવ ભાષણ નહીં હોગા, કિંતુ સત્સંગ કી જો મહિમા હૈ ઓ જૈસી મહિમા ભાષિત હોની ચાહીએ ઉસકા ભી ભાષ્યમાનપણા નહીં આયેગા. સ્વરૂપ તો અપના હૈ, વો તો ભાષિત નહીં હોગા, લેકિન સત્પુરુષ કા સંગ કા ક્યા મહત્વ હૈ વો ભી સમજ મેં નહીં આયેગા. ઇસલિયે જહાં તક સંસારગત વહાલપ ઓ સંસારગત વહાલપ કો પ્રાપ્ત ન હો તબ તક અક્સર બાર બાર પુરુષાર્થ કા સ્વીકાર કરના યોગ્ય હૈ. એસા એક માર્ગદર્શન લિખા હૈ સૌભાગભાઈ કો. दो प्रश्न है षटकार के विषय में विस्तार से विगत से समझाइए, वो द्रव्य में कैसे लागू पड़ता है. तो छह प्रकार की षट मैंने छह प्रकार की द्रव्य में शक्ति है. પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં અપના જો કાર્ય હોતા હૈ ઉસ કાર્ય કરને કે લિયે કારક શક્તિયા, કાર્ય કરને વાલી કારક મેને કાર્ય કરને વાલી શક્તિયા હોતી હૈ. ઉસમેં કર્તાપણે કી શક્તિ, કર્મત્વ હોને કી કર્મપણા કી શક્તિ, ઓર કાર્યમાં સાધન હોવે એસી શક્તિ, જિસકે દ્વારા કાર્ય હો સકે એસી સાધન શક્તિ, જિસમેં સે કાર્ય હોવે એસી શક્તિ, ઓર જિસકો કાર્ય પ્રાપ્ત હોવે ઉસકો સ્વીકાર કરને કી શક્તિ, ઝેલને કી શક્તિ, ઓર જિસકે આધાર સે કાર્ય હોવે એસી આધાર શક્તિ, એસે પ્રકાર કી શક્તિ સે સભી પદાર્થ મેં સભી દ્રવ્ય મેં અપના અપના કાર્ય હોતા હૈ. 47 શક્તિ સમય સારણી કે પરિશિષ્ટ મેં હૈ, ઉસમેં એ શક્તિઓ કા વર્ણન આયા હૈ. તો એસે દ્રવ્ય મેં એ 6 પ્રકાર કી શક્તિ હૈ. ठीक, इससे ज्यादा तो पूछने का अभिप्राय नहीं. दूसरा कि पर्याय में जो विकार होता है उसको कर्म की अपेक्षा है कि नहीं? कि पर्याय में जो भी विकार होता है उसको निश्चय से कर्म की अपेक्षा नहीं है। वास्तव में अगर कर्म की अपेक्षा होवे तो जीव पराधीन हो जाता है। विकार का नाश करने के लिए जीव की स्वतंत्रता नहीं रहती, क्यों कि कर्म का उदय है वो जीव को विकार रूप परिणमन करा देगा जबरन। तो ऐसा नहीं बनता, क्योंकि कर्म एक अजीव पदार्थ है और जीव एक सचेतन स्वतंत्र पदार्थ है, इसलिए दूसरे पदार्थ की हमें कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरा पदार्थ भिन्न होने से भिन्न पदार्थ की कोई अपेक्षा हमें नहीं है। जैसे कोई दो भाई अलग हो जाता है तो फिर इसकी अपेक्षा नहीं रहती, तो हमको इसकी अपेक्षा नहीं है, हम तो स्वतंत्र रूप से हमारा कारोबार करेंगे और जो भी हमारे मुकद्दर में होगा वो मिलेगा, लेकिन हमें कोई अपेक्षा रखनी नहीं है। होता है कि नहीं होता है, क्योंकि भिन्न हो गया। ऐसे पुद्गल भिन्न है, जीव भिन्न है, कर्म के पर्याय पुद्गल है, हमें कौन इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। हम जब चाहें हमारा परिणमन स्वतंत्र कर सकते हैं। इसलिए जब जीव स्वतंत्र रूप से कर्म के उदय का आश्रय करके और स्वरूप का आश्रय नहीं करके स्वयं विकार रूप परिणमता है, तब व्यवहार से कर्म की अपेक्षा बोलने में आती है। ये कथन व्यवहार का है। निश्चय से वास्तव से कर्म की अपेक्षा जीव के परिणमन में विकार को भी नहीं है। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वतंत्रता को सूचित करता है। स्वतंत्रता ज्ञान में बराबर रहवे तब तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं रहे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान सच्चा नहीं है, यथार्थ नहीं है। तो वजन तो हमारा स्वतंत्रता पर रहना चाहिए। स्वतंत्रता बराबर ज्ञान में है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में हमारा बैलेंस बराबर रहेगा, संतुलन रहेगा। दूसरा पर्चा है, उपयोग को कितना ऊंडा ले जाने से स्वसंवेदन होता है, ये प्रश्न है। उपयोग को सामर्थ्य तक, जहां सामर्थ्य है वहां ले जाने से संवेदन होता है, यानी ज्ञान में ज्ञान वेदन है। अपना ध्रुव स्वरूप के लक्ष्य से उपयोग अपना वेदन पर आ जाएगा तो संवेदन हो जाएगा। अपेक्षा उतनी है कि लक्ष्य में अपना त्रिकाली स्वरूप ध्रुव स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि स्वसंवेदन के काल में वेदन ज्ञान का होता है और अवलंबन ध्रुव स्वरूप का होता है। ये दोनों बात अविनाभावी रूप से हमेशा साथ में रहती है। अकेली पर्याय का वेदन होवे और ध्रुव का अवलंबन या आश्रय नहीं होवे, ऐसा स्वसंवेदन नहीं आता, प्रकट नहीं होता। इसलिए स्वरूप के लक्ष्य से ज्ञान में चलता वेदन पर उपयोग चला जावे तो स्वसंवेदन हो जाएगा। यानी स्वभाव स्वरूप, उसमें अनंत स्वसंवेदन भरा है, मेरे स्वरूप में अनंत स्वसंवेदन भरा है, ऐसी स्वसंवेदन की मैं मूर्ति हूँ, क्या मुझे स्वसंवेदन लाना पड़े? ऐसा नहीं है, मैं तो त्रिकाल अनंत स्वसंवेदन की साक्षात मूर्ति ही हूँ। ऐसा आश्रय जोर आते ही स्वसंवेदन चालू हो जाता है फटाक करके, पर्याय पर लक्ष्य ही नहीं जाता और स्वसंवेदन चालू हो जाता है। इस विधि से स्वसंवेदन होता है, इस प्रकार से स्वसंवेदन होता है। लक्ष्य नहीं जाना, लक्ष्य त्रिकाली ऊपर रहना चाहिए, वेदन ज्ञान का आ जाएगा स्वसंवेदन पर। इसमें क्या उपयोग में अहमपना रहता है तो प्रयास गलत है, और उपयोग में स्वभाव का ग्रहण होता है तो स्वभाव की मुख्यता हो जाएगी, उपयोग गौण हो जाएगा। ज्ञान में तो रह सकता है उपयोग, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तीन सौ बीसवा भी वो त्रिकाली स्वरूप है, वो अवेदक है, अवेदक है। वहां तो क्या है कि वो पर द्रव्य का अवेदक है, ऐसी विवक्षा चली है। कर्म का उदय को भोगता नहीं, वेदन मैंने भोगना, क्योंकि कर्ता नहीं है तो भोगता भी नहीं है, वो बात चली है। तो आगे कर्तापना का निषेध कर दिया, 308 से अकर्तापना स्थापित किया आचार्य महाराज ने। फिर जैसा अकर्ता है वैसे ही अभोगता है, तो कर्म को उदय को नहीं भोगता और कर्म की निर्जरा को भी नहीं भोगता, कर्म के मोक्ष को भी नहीं भोगता, कर्म की किसी पर्याय को भी वो ज्ञान नहीं भोगता है, ऐसा कहने का अभिप्राय है वहां का। हाँ, वो तो प्रकट ज्ञान, ज्ञान का पर्याय है, लेकिन वो अपने आप को निवेदन करता, ऐसी बात वहां नहीं है। और स्वभाव को अवेदक कहा है सुगानी जी ने अपने पत्र में, उसमें वो बात है कि शक्ति है वो शक्ति रूप होती है, वेदन पर्याय में होता है, इसलिए स्वरूप तो शक्ति सामर्थ्य रूप है, इसलिए वो अवेदक है, ऐसा कहने का वहां मतलब है। स्वभाव शक्ति रूप है ना, तो दीवासलाई में जो अग्नि है, दीवासली में जो अग्नि है, उसके पास पेट्रोल का पूरा पीपा पड़ा रहे तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन चिंगारी के पास हम पेट्रोल नहीं रख सकते, गैस तेल नहीं रख सकते। प्रकट अग्नि में जोखम है, वो तो पर्याय प्रकट है तो वो जला देगी, पर तो शक्ति रूप अग्नि है, ये पत्थर में अग्नि है, चकमक का पत्थर होता है, इससे कोई जलने वाली चीज नहीं है, लेकिन उसमें से चिंगारी निकली तो सावधान रहना पड़े। ऐसे शक्ति है वो व्यक्ति रूप नहीं होने से वहां वेदन कैसे हो सकता है? वेदन तो पर्याय धर्म है, गुण का धर्म नहीं है लेकिन पर्याय का धर्म है। दूसरा, पोते ही स्वयं ही अपना ज्ञेय ज्ञाता और ज्ञान ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता है, इस विषय में विस्तार से बताइए। ये समय सार में 271 नंबर का ये श्लोक है कि आत्मा स्वयं ज्ञाता है, मैंने जानने वाला है, और स्वयं ही अपने को जानता है, इसलिए स्वयं ही ज्ञेय है, और ज्ञान की क्रिया भी अपने में होती है, अपना गुण की ये शुद्ध परिणति है, इसलिए ज्ञान क्रिया भी स्वयं ही है। इसलिए ज्ञान गे ज्ञाता स्वयं ही है, दूसरा का ज्ञाता है, छह द्रव्यों का ज्ञाता है, वो व्यवहार कथन है। व्यवहार इसलिए कि छह द्रव्य है, उसका प्रतिबिंब ज्ञान में आता है, कोई दूसरा द्रव्य ज्ञान में नहीं आता है, फिर भी कहता है कि ज्ञान पर को जानता है, वो कथन स्व में पर की अपेक्षा कथन में आने से उसको व्यवहार कथन कहने में आता है, यानी असद्भूत व्यवहार कहने में आता है। इसलिए ज्ञान में अपना स्वरूप ज्ञेय रूप जानने में आता है, तो वो अपना स्वज्ञेय हो गया, जानने वाला ज्ञाता हो गया, और ज्ञान क्रिया बिना तो जानने में होता नहीं, इसलिए ज्ञान गे ज्ञाता स्वयं ही है। उसमें बीच दूसरे का दूसरों को बीच बीच में लाने की अपने को कोई आवश्यकता साधक के सभी गुण स्थान में पूर्ण शुद्धि नहीं होती, वहां तक आंशिक शुद्धि और आंशिक अशुद्धि रहती है। पूरी अशुद्धि रहे तो वो साधकपना वहां नहीं है, और पूरी शुद्धि हो जाए तो सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। इसलिए बीच में साधक अवस्था में शुद्धि और अशुद्धि दोनों अंशतः होती ही है और एक साथ रहती है। फिर भी मिथ्यात्व की अशुद्धि और पुण्यत्व की शुद्धि कभी साथ में नहीं रहती, इतनी मर्यादा अवश्य है। लेकिन राग की अशुद्धि और वितरागता की शुद्धि अंशतः साथ में रहती है, दुख की अशुद्धि और सुख की शुद्धि अंशतः साथ में रहती है, ऐसा भेद प्रभेद जो है वो समझ लेना चाहिए। जो व्यतीत हो गए उस ज्ञान के पर्याय को ज्ञान में लेना हो तो स्मरण हो गया ना उसका, तो वो स्मरण की बात हो गई और उसका विचार आएगा, क्योंकि जिस जो ज्ञान के पर्याय ज्ञेय है वो परोक्ष हो गई, प्रत्यक्ष नहीं रही, इसलिए विचार परोक्ष का होता है और अनुभव प्रत्यक्ष का होता है, परोक्ष चीज का अनुभव नहीं होता है। इसलिए वर्तमान अवस्था स्वयं ही अपने को विषय करे तभी प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसका, ऐसी बात। ऐसा है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में तो छह द्रव्य आता है, पांच द्रव्य नहीं आता है, ऐसा अधूरा ज्ञान वो नहीं है। इसलिए छह द्रव्य के अनादि अनंत पर्याय सर्वज्ञ के ज्ञान में तो अग्नि रूप हो जाती है, तो इसमें कोई चीज बाकी तो नहीं रही, और बाकी रही तो सर्वज्ञपना कहना बेकार है। तो अगर हम सर्वज्ञ को यदि स्वीकारते हैं तो जो लोग सर्वज्ञ को नहीं स्वीकारते इनके लिए तो हमें चर्चा करना भी बेकार है। जब हम लोग स्वीकारते हैं तो फिर कोई हमारा आत्मा या दूसरा आत्मा या किसी एक द्रव्य का भी कोई बात नहीं जाने और सर्वज्ञ वो बात तो न्याय युक्त भी नहीं है। जब वस्तु स्थिति ऐसी ही है तब इसमें तो कोई फेरफार नहीं कर सकते, सर्वज्ञपणा को मिटा नहीं सकते। जब सर्वज्ञपणा को मिटा नहीं सकते तो इनके ज्ञान को भी और इनके ज्ञान के विषय को भी हम मिटा नहीं सकते, ये तो वस्तु स्थिति होगी। अब समस्या रही पुरुषार्थ की, तो पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है? हमने अब तक पुरुषार्थ का स्वरूप ऐसा समझ रखा है कि कुछ हेरफेर करे उसका नाम पुरुषार्थ, क्या फेरफार कर देवे उसका नाम पुरुषार्थ। ये हमारी पुरुषार्थ विषय जो समझदारी है वो सही नहीं है, वो गलत समझ है हमारी। पुरुषार्थ को हमें वैज्ञानिक तौर से समझना चाहिए कि आत्मा में एक वीर्य नाम का गुण है, शक्ति है, बेहद सामर्थ्य है कि जो स्वयं स्वरूप की रचना करने का प्रयोजनभूत कार्य करता है, शुद्ध कार्य करता है। अब जो गुण है उसकी परिभाषा ही यही है या स्वरूप ही ऐसा है कि जो निरंतर परिणमनशील रहे उसको गुण कहे, क्या? तो जो निरंतर परिणमनशील है, परिणम रहा है, उसमें क्या नहीं परिणमता है उसका परिणमन चालू करना है? पुरुषार्थ करना मतलब क्या है? वो तो वीर्य गुण के पर्याय है, तो क्या वीर्य गुण का परिणमन बंद हो गया है उसको चालू करना है? क्या करना है पुरुषार्थ करने का मतलब क्या? पुरुषार्थ सभी जीवों को हो ही रहा है, क्या एक भी जीव विश्व में ऐसा नहीं है कि जिसको पुरुषार्थ का परिणमन न हो? अब जब हो रहा है तो नया करने का सवाल नहीं रहा, लेकिन जो पुरुषार्थ उल्टा चल रहा है उसको सुलटा होवे तो प्रयोजनभूत कार्य मैंने शुद्ध पर्याय की रचना होगी, और उल्टा होगा तो अशुद्ध पर्याय की रचना होगी। तो यहां भी आप प्रश्न कर सकते हो कि उल्टा में से सुलटा करना इतना तो फेरफार की बात आई कि नहीं आई? आई समझ में? ऐसा भी नहीं है। क्यों? कि पुरुषार्थ जब अपना स्वरूप, पुरुषार्थ का उत्पादक आत्मा में निमित्त रूप कौन गुण है? ऐसे तो सब गुण अपनी ताकत से परिणमता है, तो पुरुषार्थ का उत्पादक गुण कौन है? कि ज्ञान है, वो पुरुषार्थ को उत्पन्न करता है। तो ज्ञान जो है वो स्वरूप के ज्ञान में हम अनभिज्ञ है। अब हमने सर्वज्ञ के माध्यम से इस प्रश्न को तो उठाया है, तो जो सर्वज्ञ है वो आत्मा का स्वरूप है। तो गुरुदेव यही कहते थे कि अगर तूने सर्वज्ञ का स्वीकार हुआ तुझे तो आत्म स्वभाव का स्वीकार हो गया उसमें। तो पुरुषार्थ जो उल्टा चलता था वो बिना विकल्प सुलटा चलने लगा, फेरफार करने की बुद्धि नहीं हुई, फिर भी सर्वज्ञ से अगर बात लेते हैं तो सर्वज्ञ स्वभाव का स्वीकार होते ही पुरुषार्थ की दिशा बदल गई। पुरुषार्थ तो परिणमन हो ही रहा था, उसकी दिशा बदल गई और सहज रूप से तो अपने आप में कार्य करने लगा, शुद्ध परिणमन रूप होने लगा, तो उसमें फेरफार करने की समस्या है वो नहीं रही। सर्वज्ञ को स्वीकार करेंगे तो फिर हमारे में हम फेरफार कैसे करेंगे, ये समस्या नहीं रही। अच्छा कोई दूसरा न्याय ले ले के पर्याय है उसमें सुख होना, सच्चे पुरुषार्थ से सुख होना, ऐसा हम फल चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं पेड़ में भी फल को पानी पाया जाता है क्या? पानी कहाँ पाया जाता है? सिंचन पानी का कहाँ होता है? मूल में होता है। अगर पानी की बाल्टी भर के उसमें छोटा फल या फूल आया हो उसको डुबो दें, क्या होगा? फल फूल बिगड़ जाएगा, वो पकेगा नहीं। लेकिन पानी अगर मूल में सिंचन करें तो जो फल है वो तगड़ा हो जाएगा या पूरा पक जाएगा। लेकिन कोई ऐसे ही बुद्धि लगावे कि पानी मूल में डालेंगे, आम का पेड़ इतना बड़ा है, पानी कब उधर पहुंचेगा? पानी पहुंचने में उतनी देर लगे बजाय इसके हम वहीं पानी को लगा देवे, बाल्टी भाल फल के साथ जॉइंट कर देवे, पानी की बाल्टी भी वहां लगा दें हम डाली के साथ, फल बिगड़ जाएगा। ऐसे पर्याय में सुख शांति का फल चाहिए। तो पर्याय का प्रभाव स्थान मूल है द्रव्य, द्रव्य में से पर्याय आती है, तो द्रव्य में सिंचन करना चाहिए। मैं ऐसा हूं, सर्वज्ञ स्वभावी में आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान का सिंचन होते ही सुख शांति स्वतः, पुरुषार्थ आदि स्वतः उगड़ने लगता है, खिलने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। ऐसा एक वैज्ञानिक तरीका है। इसलिए जिस पदार्थ में जिस विज्ञान से कार्य होता है उसी विज्ञान से क्या कार्य करना चाहिए। शॉर्टकट करने को जावे और सारा कार्य बिगड़ जावे तो ऐसा नहीं चलता। कार्य की विधि समझ लेनी चाहिए और उसी विधि से कार्य करने का काम होना चाहिए तो अच्छा होता है, ठीक होता है। इसलिए क्रमबद्ध और पुरुषार्थ को कोई आपस में विपर्यास नहीं है। जिसको क्रमबद्ध समझ में आया उसको पुरुषार्थ उसी वक्त चालू हुआ। लेकिन करू करू वाला नहीं, कर्तृत्व बुद्धि वाला नहीं, वो तो अपुरुषार्थ है, उल्टा पुरुषार्थ है, ऐसा नहीं होता। और वास्तव में उसका अध्यात्म का न्याय कोई दूसरे ढंग का है कि जिस आत्मा को अपना स्वभाव स्वरूप की सावधानी आती है और अपने स्वरूप में वो सावधान होता है, उसको स्वरूप के आश्रय से पर्याय की चिंता मिट जाती है कि मेरा पर्याय में क्या होगा, कैसे होगा। इस सब प्रकार की पर्याय की दुश्चिंता मिट जाती है और पर्याय की सावधानी में या द्रव्य की सावधानी में पर्याय की उपेक्षा हो जाया करती है। उतनी द्रव्य में सावधानी रहती है साधक की कि वो अपने पर्याय के विषय में सावधान नहीं रहता, उपेक्षित हो जाता है। दो जगह सावधानी रहेगी नहीं, क्योंकि स्वभाव है वो अंतः तत्व है, पर्याय बहिर तत्व है। तो बहिर तत्व पर सावधानी छूट जाएगी, उस बेसावधानी के भाव में महात्माओं ने ऐसा बोल दिया कि पर्याय जैसी होगी वैसी अपने काल में होती रहेगी, हमें कोई चिंता नहीं है। ऐसा हमें कोई पर्याय की सावधानी नहीं करनी है, नहीं चाहिए। उसमें से क्रमबद्ध पर्याय निकली हुई है वास्तव में। तो ये अध्यात्म है इसका। तो अध्यात्म को तो नहीं समझे। और स्वरूप की सावधानी में स्वरूप प्रत्ययी पुरुषार्थ है उसको तो नहीं समझे। और पर्याय क्रमबद्ध होगी तो पुरुषार्थ कैसे होगा? ऐसा जिसको असमाधान रहता है उसको पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है अध्यात्म में उसकी खबर नहीं है। गुरुदेव ने तो इस विषय को बहुत खोला है, करीब इसमें से 200 करीब न्याय निकाले हैं एक क्रमबद्ध पर्याय का। हमने तो 3-4 बताए, गुरुदेव ने तो करीब करीब 200 न्याय निकाले हैं इस विषय पर। सारा एक क्रमबद्ध पर्याय का स्पेशल अंक निकला था आत्मधर्म का और सदगुरु प्रवचन प्रसाद का। उस जमाने में जब ये विषय निकला तो पर्याय के कर्तृत्ववादियों को ये बात बहुत अखरती थी, और जो विद्वान लोग थे जो पर्याय के कर्तृत्व में ठोस पड़े हुए थे वो तो बहुत गुरुदेव के बारे में कड़क आलोचना करने लगे कि ये क्रमबद्ध पर्याय वाली बात कांजी स्वामी की बराबर नहीं है, वो जहर के इंजेक्शन है। ऐसे लिखते थे, क्या लिखते थे, वो जहर के इंजेक्शन है, कांजी स्वामी जहर के इंजेक्शन लोगों को देते हैं, संभालिए संभालिए, ऐसे बहुत विरोध चला था। तो जितना विरोध चला उतना स्पष्टीकरण आया गुरुदेव से। वो लोग जितनी बुद्धि से तर्क निकालते थे उनका सबों का समाधान गुरुदेव ने दिया अपने प्रवचनों में। उसका बहुत विस्तार से वो प्रवचन प्रसिद्ध हुए हैं। वो तो शुरुआत तो बहुत आगे से हुई है, हमारा प्रवेश तो बाद में है, लेकिन हमने प्रवेश करने के बाद सब पढ़ लिए थे क्या क्या बात गुरुदेव कर चुके हैं, हम देखे तो थे। हाँ, ज्ञान स्वभाव नहीं स्वभाव एक पुस्तक है, वो भी गुरुदेव के क्रमबद्ध पर्याय के ही प्रवचन हिंदी में है। हाँ, गुजराती में भी वो आत्मधर्म में और सदगुरु प्रवचन प्रसाद में गुजराती में हमने तो पढ़ा था, नहीं मूल में गुजराती में, बाद में हिंदी। विचार चलता था, भाव बिना तो बिना का तो आत्मा होता ही नहीं है। हाँ, तो आवश्यकता नहीं है, सभी भावों को प्रदर्शित करने की तो कोई आवश्यकता नहीं होती, इसका क्या महत्व है? प्रश्न समझ में नहीं आता। फिर जिस चीज की हमें महत्ता है, दुनिया के पदार्थों की हमें संयोगों की महत्ता है, उसमें रस लिया है और उस रस को तोड़ा भी नहीं है, जो रस हमें आया है उसके विरुद्ध रस आएगा तब ये टूटेगा, वहां तक वो टूटने वाला नहीं है, लंबाता है, तो लंबाता रहेगा वो तो। इसलिए हमने जो भी भौतिक पदार्थों का पुद्गल पर्यायों का रस लिया है उस रस को आत्मरस पूर्वक तोड़ेंगे, आत्मरस बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा ज्यादा मात्रा में आत्मरस पैदा होगा तभी वो टूटेगा। इसलिए रस तोड़ने की प्रक्रिया अवलोकन का जो प्रयोग वो चालू करना चाहिए, यही बात। क्योंकि परिणाम की पूरी ताकत जो है वो रस के फैक्टर में है, उसको अनुभाग कहते हैं, उसको फलदान शक्ति कहते हैं शास्त्र की परिभाषा में। तो अपना विभाव, रस में विभाव की शक्ति है, विभाव परिणाम में जो विभाव रस है उसमें विभाव की शक्ति है। तो विभाव की ताकत टूटेगी जभी तो स्वभाव का काम होगा और स्वभाव शक्ति प्रकट होगी। इसलिए रस का अवलोकन करते ही रस टूटने लगता है। एक सुविधा है कि रस का अवलोकन करने वाला ज्ञान ही इस रस को खत्म करता है। तो रस तोड़ते जाओ, विभाव रस तोड़ते जाओ, काम चालू हो गया आपका अवलोकन से। ऐसा है कि हम चलते हैं तो खड्डा आता है तो पैर नहीं रखते इसमें, साइड में चलते हैं, है कि नहीं? इतना ट्रैफिक है तो कैसे, कितने संभाल के चलते हैं? इतना बड़ा सिटी में ट्रैफिक भी बहुत होता है, फिर भी संभाल के चलते कि नहीं चलते? वैसे जहाँ भी हमको नुकसान होता है वहाँ तो बचने का भाव आएगा ही आएगा। जब हमको पता चला कि विभाव रस में हमको दुख का नुकसान है, आत्मा में शांति और सुख होवे यही लाभ है और आत्मा में अशांति और दुख होवे यही नुकसान है, पैसा का लाभ नुकसान आत्मा में नहीं है, वहाँ तो सुख दुख का हिसाब किताब लगता है। तो जब हमें पता चला कि विभाव रस से हमें दुख होगा तो हमको बचने का भाव आना चाहिए। पहले सही बात समझ ले, मैं कैसे काम होता है, वस्तु स्वरूप क्या है, कार्य पद्धति क्या है, पहले समझ ले वे, फिर और काम चालू करें। फिर पहले समझने का काम करें इसमें क्या है। हाँ, सत्संग जरूरी, सत्संग बिना बात अनेक पड़खों से समझ में नहीं आती। जैसे अपन बैठे हैं तो कई पड़खों की चर्चा चलती है कि नहीं चलती। सत्संग में का ये फायदा है कि स्वयं को इतना विचार नहीं आवे तो दूसरे को विचार आएगा, तीसरे को विचार आएगा, कोई बात हमारे ध्यान में नहीं आती तो दूसरे के ध्यान में आ जाती है। इसलिए सत्संग में समझने का अच्छा मौका है, सबसे अच्छा मौका सत्संग में रहता है। इसलिए ज्ञानियों ने सत्संग को प्रधान साधन कहा है। वो तो कल रात को 450 में चालू किया। उसमें क्या है कि वो अपने स्वानुभव के दिशा में आगे बढ़ रहे थे, स्वानुभव की दिशा में वो आगे बढ़ रहे थे, यानी सम्यक दर्शन की समीप जा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मैं समीप जा रही हूँ, अब थोड़ी देर है, मैंने नज़दीक पहुँच, नज़दीक है अभी तो, थोड़ा इतना दूर नहीं है। तो ऐसा चेष्टा करके बताया कि अभी इतना दूर है, अभी इतना दूर है, हैं? हाँ, ख्याल में वो स्वरूप निश्चय के बाद वो ख्याल आ जाता है। स्वरूप निश्चय के बाद इसका ख्याल पड़ जाता है कि अभी मुझे स्वानुभव दूर नहीं है, क्योंकि सन्मुखता होती है स्वरूप निश्चय में, स्वरूप सन्मुखता होती है, तो सन्मुखता में पता चल जाता है। ऐसी बात है, हाँ हाँ, तो सन्मुखता में स्वरूप की पहचान होगी तो अनुभव का काल बहुत नजदीक रहता है तो उसका ख्याल आ जाता है कि अभी अनुभव दूर नहीं है, तो कोई बता सकते भी हैं। अभी तो कोई नहीं है हमारे ख्याल, अभी कोई नहीं है। जैसे कि ये सोगानी जी हो गए पर अभी तो है ही नहीं, वर्तमान में कोई नहीं दिखता। इसलिए मुमुक्षुओं को ये समस्या है, तो बहुत बड़ा। हाँ अभी काल ही ऐसा है, ये पंचम काल है उसमें भी हुंडाव सर्पिणी काल है। क्या पंचम काल है उसमें भी हुंडाव सर्पिणी है पंचम काल, तो ऐसे काल में ऐसे महान पुरुषों का की संख्या बहुत अल्प होती है, या कुछ गैप हो जाता है, बाद में कोई पैदा होता है, कुछ गैप के बाद कोई पैदा होता है, ऐसा हुआ करता है। सतत सत्पुरुषों का योग मिले ऐसा अच्छा काल ये नहीं है, तो ऐसे दुर्भाग्य में आना हुआ है तो क्या करें, ये सवाल हो सकता है। तो क्या है कि हमारी भावना जो है सत्संग की, सत्पुरुष के योग की, वो तीव्र हो जानी चाहिए। क्या तीव्र हो जानी चाहिए? पानी की प्यास लगती है और प्यान पानी जल्दी नहीं मिले ऐसे क्षेत्र में हम आ गए, तो क्या पानी की प्यास मिट जाएगी या सतेज हो जाएगी? क्या हो जाएगा? और तेज हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो इस विषय की हमारी समझ सही है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी इस विषय की समझ एकमात्र फालतू जानकारी रह जाती है कि ये काल ऐसा है, जान लिया, जैसे हमें तो कोई इसकी चिंता नहीं है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर हमारी भावना तीव्र हो जानी चाहिए। तो इससे फायदा बहुत है। क्या? कि आज कोई सत्पुरुष नहीं है इसका मतलब नहीं है कि कल कोई होने वाला नहीं है। जैसे हमें दर्द होता है तो कैंसर का आज इलाज नहीं है, लेकिन हम खोज करते कि नहीं करते कि अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उसमें हमारे जो भी संबंधित हैं, सगे हैं, जान पहचान वाले, उनको हम चिट्ठी लिखेंगे कि भाई वहाँ रिसर्च चलता है, स्विट्जरलैंड में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमको ये पता पर इसका जानने का मिला है। इसका अभी तो निकलते हैं ना सब पीरियोडिकल्स निकलते हैं, उसमें से पता चलता है तो हम लिख देते हैं कि भाई जरा वहाँ इंक्वायरी कर लो, कोई भी इलाज निकला है कि नहीं निकला है, कितनी टकेदारी रखते हैं हम। इससे ज़्यादा हमारे पास शक्ति हुए तो हम दुनिया भर के पेपर में एडवर्टाइज निकाल सकता है कि इस प्रकार का कैंसर का अगर कोई इलाज निकला हो तो फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी हमको मालूम करे, ये हमारा एड्रेस है। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? हमने निकाला था गुरुदेव को ब्लड कैंसर था ना, तो हमें सारे हिंदुस्तान के सभी भाषाओं के पेपरों में ये निकाला था, नाम नहीं दिया था, लेकिन हमने वो पर्टिकुलर टाइप का जो ब्लड कैंसर था उसको मेडिकल भाषा में जो प्रयोग शब्द प्रयोग करते हैं उसका शब्द प्रयोग करके लिखा था कि इस टाइप का अगर ब्लड कैंसर का इलाज कहीं भी हो, किसी ने किया हो, कहीं सफलता मिली हो, कोई डॉक्टर हो या कोई दर्दी हो, जिसको भी जानकारी हो, सिर्फ डॉक्टर नहीं दर्दी भी, तो प्लीज राइट टू करके हमने वो तमिल भाषा में, मलयालम में, इसमें कन्नड़ में, पंजाबी में, बंगाली में, सभी भाषाओं के पेपरों में दिया था। बहुत एडवर्टाइज बिना नाम की पोस्ट बॉक्स नंबर करके निकाली थी। तो हम वैसे बैठे नहीं रहेंगे, हमें ज़रूरत है तो हम खोज करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो नहीं खोज करेंगे। तो जब हमारी खोज चालू होगी तो आज नहीं है तो कल हो सकते हैं। हमारी नज़र में खोज है तो आएगा, अगर हमारी खोज नहीं है तो नज़र में नहीं आएगा, होगा तो भी अच्छा। मानो के हमारी खोज चालू हो रही और कोई सम्यक दृष्टि और सत्पुरुष नहीं पैदा हुआ, तो हमारी भावना से ऐसा कर्म बंधेगा कि आयु पूरा होते ही जहां सत्पुरुष गए ना वहां हम चले जाएंगे। कोई हमें साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां जाने के लिए, न तो हमें प्लेन में बैठना पड़ेगा, न टिकट निकालनी खरीदनी पड़ेगी, न कोई जरूरत पड़ेगी इस देह की भी, ये देह छूट जाएगा हम वहां चले जाएंगे। कोई विदाउट एनी व्हीकल, कोई साधन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी भावना हमें वहां ले जाएगी। तो भावना तीव्र हो जाए ऐसा ये काल है। अब दूसरे न्याय से देखे तो ये ऐसा काल है कि सत्पुरुष नहीं है तो सत्पुरुष की पाने की भावना सत्संगी तीव्र हो जाए ऐसा काल है, और ये हमारा